का था, रूह वही रूह नया।
आज सितंबर 5 है, जिसे हम हिंदुस्तान में टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। टीचर्स डे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट और सेकेंड प्रेसिडेंट हुए थे, उनके जन्म दिवस को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वो एक बहुत ही फिनोमिनल एजुकेटर भी थे। और इस दिन के उपलक्ष्य में, एज वी आर डूइंग प्रोग्राम टुडे, मैं जितने भी गुरु हैं जो बाय प्रोफेशन टीचर्स हैं, सबसे पहले उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो एक इतना इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं। और उसके बाद लाइफ में जितने लोग हमें मिलते हैं, जिनसे हम कोई ना कोई शिक्षा लेते रहते हैं, उन सबको भी हमारा प्रणाम और धन्यवाद। पिछले 2 सालों में 1.5 सालों में, जब से ये कोविड चला है, तब से टीचर्स का जॉब थोड़ा और भी कहना चाहिए कि चैलेंजिंग हो गया है। और बहुत सारे टीचर्स ने नए ढंग से पढ़ाना सीखा, नए तरीक़ों से स्टूडेंट तक अपनी बात पहुंचाना सीखा, तो उनके उन सब प्रयासों के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक का हम सब की ज़िंदगी में बहुत अहम रोल होता है। जब हम छोटे में स्कूल जाना शुरू करते हैं, तब से लेकर जो हमारी फॉर्मल पढ़ाई होती है, जो जो टीचर्स हमें मिलते हैं, उन्होंने हमें क्या बातें सिखाई, किस ढंग से सिखाई, वो हमारी आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो एक बार फिर सभी शिक्षकों को हमारा प्रणाम, धन्यवाद और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड उनके लिए। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज मैंने कोई नई रिकॉर्डिंग नहीं की है। आई स्टम्बल ऑन टू दिस पर्टिकुलर शो जो मैंने 2018 में डॉक्टर हना फारूक के साथ किया था, और इट वॉज सच अ प्लेजेंट शो। उनकी जो सॉफ्ट मुलायमियत वाली आवाज़ है वो सुन के, और उनकी जो शायरी है और गानों के प्रति उनका जो मोहब्बत है उनकी, मैं चाहूँगी कि आज जब हम इस कार्यक्रम को, जो मैंने डॉक्टर हना फारूक के साथ 2018 में किया था, आप फिर से सुने और इसका आनंद लें। तो चलिए आपका परिचय कराते हैं डॉक्टर हना फारूक के साथ।
भाई, आज देसी जायका के स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपने आप में कई रंग समेटे हुए हैं। कैसे, सुनिए। वो पेशे से तो डॉक्टर हैं, क्लिनिकल रिसर्च साइंटिस्ट। सोसाइटी के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा उन्हें पॉलिटिक्स में ले आया। सो एज शी सेज, शी इज़ अ ब्रांड न्यू पॉलिटिशियन। और दिल से, भाई दिल से तो हम कहेंगे कि वो एक शायरा है। और आज वो शायरा के रूप में हमारे देसी जायका के स्टूडियो में है। तो देसी जायका में आपका बहुत बहुत स्वागत है हना, और बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला।
भाई पूजा, इस खूबसूरत तारुफ का शुक्रिया। ये बातें सुन के तो मैं खुद अपने आप से मुतासर, यानी बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। और ज़िंदगी के काम और ये मसरूफियत तो चलती ही रहती है, लेकिन हमें इन मसरूफ लम्हों से कुछ वक्त चुराना पड़ता है।
बिल्कुल,
ख़ास तौर पे उन कामों और उन चीज़ों के लिए जिनसे हमें खुशी और दिली सुकून मिलता है।
बिल्कुल सही कहा आपने हना, और इसीलिए आपका बहुत शुक्रिया कि इतनी मसरूफियत के बाद आपने ये हमारे लिए वक्त निकाला। और एक बात मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि जब हम हना से मिले थे, तो वो बातचीत का सिलसिला बिल्कुल एक अहलदा, बिल्कुल एक डिफरेंट मसले पर बात से शुरू हुआ था। बट वेन आई वॉज टॉकिंग टू हर एंड द वे शी वॉज कोटिंग सॉन्ग की लाइन्स हमारी बातों में, हम तभी समझ गए थे। और जब इनसे कंफर्म किया तो शी सेड, या शी इज सो मच इन टू सॉन्ग्स एंड हियर वी आर टूडे। सो हना, फिर कहाँ से शुरू करें आज का प्रोग्राम?
भाई देखिए, कैंपेन की मसरूफियत तो अपनी जगह। मैं सिर्फ आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये कैंपेन नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना।
वाह वाह वाह, क्या बात कही, हमको पूरा अंदाजा हो गया कितना बड़ा आग का दरिया होगा। इश्क वैसे नहीं किया हमने अभी तक।
जी, और देखिए बात ये कि हम सब यहाँ अपने ख्वाबों और अपने उमंगों की तलाश में पहुँचे हुए हैं।
जी,
अब ये इस वक्त जो कैंपेन है और इसके आगे जो हमने एक गोल सेट किया है, ये एक नया ख्वाब है। और अब देखते हैं 6 नवंबर को क्या ताबीर हमारे सामने आती है। इसी सिलसिले में आप हमारे लिसनर्स ये पहला सॉन्ग सुनिए, पेश खिदमत है।
हुआ ये कि ख्वाब मिल गए उस एक पल में हम बदल गए, जो भी हो सो हो। क्या लिरिक्स थी। ये गाना था फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आवाज़ अलाइसा मेडनोसा, मोहित चौहान, संगीत शंकर एहसान लॉय का, और लिरिक्स थी जिसके बारे में अभी बात हो रही थी जावेद अख्तर साहब की, और पर्दे पर फरहान, रितिक, अभय देओल, ड्राइविंग टुगेदर इन अ सनी डे। सो है ना, व्हाट्स नेक्स्ट।
जी पूजा, आपको ये बताती चलूँ कि करीब 2-3 साल कबल बहुत ही बेहतरीन मुशायरा एक हुआ वाशिंगटन डीसी में, अलीगढ़ एलुमिना एसोसिएशन के तहत। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा और मुझे पहली बार जावेद अख्तर साहब के साथ मुशायरा पढ़ने का शर्फ हासिल
हुआ। क्या बात है।
तो वो मुलाकात इस कदर दिलचस्प थी, मैंने उनसे ऑटोग्राफ की दरख्वास्त की
जी।
तो उन्होंने अपनी नई किताब जो कि जिसका उन्वान लावा है, उन्होंने अपनी किताब मुझे दस्तखत के साथ ऑटोग्राफ करके दी। मुझे उनकी जो सबसे ज़्यादा बात पसंद आई वो ये कि उनका शार्प सेंस ऑफ ह्यूमर इंसान को बिल्कुल लाजवाब कर देता
जी,
है।
जी, जी।
तो एक खातून वहाँ पे थी, कहने लगी कि देखिए ये 42वां साल है जो ये मुशायरा हो रहा है और जिसकी बुनियाद कई साल पहले जावेद साहब ने खुद डाली थी। तो कहने लगे, हाँ मुझे कुछ कुछ याद है, मैं उस वक्त बहुत छोटा सा था।
सी, मुझे लगता है कि जिस तरह की वो वाइब्रेंट लिरिक्स लिखते हैं और वाइड रेंज लिरिक्स लिखते हैं, पोएट्री तो खैर उनकी लाजवाब है ही, पर फिल्मों के गानों में भी यू कैन सी उनकी पर्सनालिटी। अगर इस तरह से ना हो, यू कैन नॉट राइट ऑल दीज वाइब्रेंट सॉन्ग्स।
उनके लिरिक्स में पर्सनालिटी झलकती है। तो मैंने उनसे कहा कि आप बड़े डाउन टू अर्थ हैं, ये तो आपका हम्बलपन है। तो हंसने लगे, कहने लगे, आप इसे मेरी हम्बलियत कह सकती हैं।
दिस साउंड्स एग्जैक्टली लाइक जावेद साहब, जो हम लोगों ने उन्हें इंटरव्यू में देखा है। तो है ना, कौन सा अगला सॉन्ग, क्या जावेद साहब का ही अगला सॉन्ग आप बजाने की?
भाई अगर आप मेरी लिस्ट पे जाएंगी तो आपको तो हर दूसरा गाना जो है वो जावेद साहब का ही मिलेगा। कई पसंदीदा गाने हैं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया,
दैट इज
नेवर एंडिंग लिस्ट, तवील फहरिस्त जिसे कहते हैं।
जी जी जी।
लेकिन ये कि इस दफ़ा हम इस के लिए मैं आपसे अपने व्यूअर अपने लिसनर्स के लिए ये पेश करना चाहूँगी, गूंजा सा है एक तारा, रेखा भरद्वाज की आवाज़ में।
जी बिल्कुल, गूंजा सा है कोई एक तारा, वेकअप सेट, फिल्म का नाम, अमित त्रिवेदी का संगीत, आवाज़ तोशी रैना और अमिताभ भट्टाचार्य, रमन महादेवन की, और बोल जैसे कि हना ने कहे एक बार फिर जावेद साहब के, और पर्दे पर थे रणबीर कपूर विद कोंकणा सेन शर्मा। ब्यूटीफुल सॉन्ग।
भाई जावेद साहब की बात आती है उर्दू शायरी की, तो मैं आपको खुशवंत सिंह साहब का एक बहुत ही मज़ेदार कोट बताना चाहती
हूँ। ज़रूर ज़रूर।
कहते हैं कि अगर आप इश्क करना चाहते हैं तो उर्दू सीख लीजिए, अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं तो इश्क कर लीजिए।
बिल्कुल बड़ी पते की बात कही है, शायद हमने कुछ कोई ना कभी इश्क किया होगा तभी थोड़ी बहुत उर्दू आ गई है हमको। पर बहुत खूबसूरत बात कही उन्होंने, सही।
जहाँ हम जावेद साहब का जिक्र करते हैं, कैफी आजमी का नाम ना आए ये मुमकिन नहीं।
ये तो सही कहा आपने।
तो लावा में ही,
लावा जो जावेद साहब की बुक आप, ओके बिल्कुल बिल्कुल,
मजमू है उनकी पोइट्री की जी, उसमें उन्होंने कैफे आजमी के लिए एक नज्म लिखी है। पूरी नज्म का तो हमारे पास वक्त नहीं, लेकिन कुछ लाइनें मैं आपको सुना।
जी बिल्कुल।
अजीब आदमी था वो, मोहब्बतों का गीत था, बगावतों का राग था, कभी वो सिर्फ फूल था, कभी वो सिर्फ आग था।
क्या बात है।
तो
बहुत खूब,
यही सिलसिला आगे बढ़ाते हुए जो अगला नगमा, अगला गाना हम अपने लिसनर्स के लिए पेश करेंगे, वो कैफे आजमी साहब का लिखा हुआ गीत है।
क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या क्या लिरिक्स हैं, कैफी साहब ने क्या लिखा है, ये एक एवरग्रीन सॉन्ग है. और आई थिंक ये गाने की लाइन तो हम अक्सर आम बोलचाल में भी यूज़ करते हैं, राइट?
सिर्फ इस गाने की क्या, हम तो जब स्कूल और कॉलेज के ज़माने से ही या मुहावरों में बात करते थे या अशार में और या गानों में. आज भी हमने वही ट्रेंड, अपनी वही रवायत जिंदा रखी हुई है.
होल्ड दैट थॉट, लेट मी गिव द क्रेडिट ऑफ दिस सॉन्ग एंड देन विल. आज हमारे साथ देसी जायका में है हना अली, द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट, एंड वो उन्होंने मसरूफियत से वक्त निकाला और हमारे साथ गाने शेयर कर रही हैं आज यहाँ अपना प्यार पोएट्री के लिए. और अभी जो हमने गाना सुना वो कैफी आजमी की बोल थे, जगजीत सिंह साहब की सोलफुल आवाज़ पर्दे पर राज किरण और शबाना आजमी, और फिल्म थी अर्थ. और हना बात कर रही थी कि गानों का हमारी डे टू डे लाइफ में क्या उनकी जगह है. कहें हना
भाई, लाइफ इज अ कॉमेडी ऑफ एरर्स, और अब टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए.
जी बिल्कुल.
तो उस टेक्स्ट मैसेजेस में हम किस तरह गानों को इस्तेमाल करके पूरी बात दूसरे तक पहुंचा देते हैं बगैर कोई मजमून भेजे.
पोएट्स ने हमारा काम आसान कर दिया.
एग्जैक्टली, ऐसे लिखे बगैर.
जी,
सबसे जिसे कहते हैं कम से कम अल्फाज में बड़ी से बड़ी बात अगले तक पहुंच
जाती है. ये कही ना आपने बात, बिल्कुल जी.
अब बिजनेस ट्रिप्स को ही लीजिए. जब मैं ट्रैवल करती हूँ, मेरे हस्बैंड ट्रैवल करते हैं, वी ऑल नीड टू पिक एंड ड्रॉप फ्रॉम एयरपोर्ट्स. तो मुझे टेक्स्ट आता है, प्रीतम आन मिलो. यहाँ से मेरा जवाब जाता है, थारे रहियो थारे रहियो.
सो क्या कहती हैं, इस गाने का एक नमूना पेश किया जाए हमारे सुनने वालों को. चलिए,
नेकी और पूछ पूछ.
थाड़े रहियो, 1972 की मूवी पाकीज़ा. थोड़े पुराने वक्त में ज़रूर ले गए थे आपको, पर गाने की मिठास ने छुआ ना आपको. सो गाना था पाकीज़ा से, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, लता जी की मीठी सी आवाज़, संगीत गुलाम मोहम्मद, और पर्दे पर द एटर्नल ब्यूटी मीना कुमारी.
आपने देखा ये गाना जिस शेर से शुरू हुआ कि आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद. आज की रात बड़ी देर के बाद आई है, तो शेर की खूबसूरती इस तरह भी होती है कि सुनने वाला उसे किस तरह से परसीव कर रहा
जी
है.
बिल्कुल, बिल्कुल.
किस तरह से, किस एंगल से इंटरप्रेट कर रहा है.
ऑलवेज पोएट्री इज ऑल अबाउट
इंटरप्रिटेशन.
इंटरप्रिटेशन
सारी अल्फाज की आंख में चोली, अल्फाज का खेल है. अब आप देखिए, बहुत मशहूर जमाना शेर है गालिब का
जी,
इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई.
थोड़ा सा मीनिंग बताना पड़ेगा.
तो इसका एक तो आप इंटरप्रिटेशन इस तरह ले सकते हैं कि भाई मेरे दुख की दवा करने के लिए इब्ने मरियम हुआ करे कोई. एक तो एक ये इसकी एक ये एंगल एक थॉट बन गया. दूसरी तरफ इसी शेर को अगर आप इस अंदाज में पढ़ें और अदा करें, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा.
ओहो, तो पहले उन्होंने कहा कि भाई कोई इस तरह का हो.
हाँ,
जो
मेरे ठीक है, आप हैं इब्ने मरियम, मुबारक हो आपको, लेकिन व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे दुख की दवा के लिए.
सो जिस फ्रेम ऑफ माइंड में हम होते हैं और जैसे समझना चाहते हैं, लिखने वाले ने लिख दिया.
हाँ, अब आपकी ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड है कि आप उसे किस तरह से परसीव करते हैं, आपका मेंटल फ्रेम.
बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने. और मैं हमेशा से इस बात पर यकीन रखती हूँ कि पोएट्री जो होती है उसकी सबसे बड़ी खासियत होती ही ये है कि वो आपको बहुत ज्यादा लिबर्टी देती है. आप उन अल्फाजों को जिस ढंग से सोचना समझना चाहें वो आपको उसकी इजाजत देती है कि
बिल्कुल. और ये जिस तरह से पोइट्री किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो लिमिटलेस है, उसका एज से कोई ताल्लुक नहीं. अब हम तो जब स्कूल कॉलेज के जमाने में थे तभी से गालिब पढ़ना शुरू कर दिया, तभी से उर्दू पोइट्री ने अपना असर हमारे ऊपर करना शुरू कर दिया.
और पोइट्री मतलब उर्दू तो वाकई एक मीठी लैंग्वेज है, बट आई विल से पोइट्री इन जनरल किसी भी भाषा में वो आपके दिल को छूने का एक जरिया है. राइट. सो अब हम
तो कहां जैसे, जैसे इस गाने ने नॉस्टैल्जिया क्रिएट किया है, मैं ये बताना चाहती हूँ अपने लिसनर्स को कि आपका तो पता नहीं मगर हमारा तो ये हाल है कि इम्तिहान जब भी हमने पास किया अगले दर्जे ने बदहवास किया. और आपको याद हो कि ना याद हो, कायनात की ये पूरी साजिश रही है हर जमाने में कि सबसे अच्छा मौसम इम्तिहान के ही दिनों में होता है।
सबसे अच्छी नींद, सबसे अच्छे टीवी सीरियल्स, सबसे अच्छा मौसम आउटसाइड,
बेहतरीन डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो जिन दिनों इम्तिहान चल रहे होते हैं तभी होती है। तो हम तो यही कहते थे कि दिन हो गए हैं जालिम, रातें हैं कातिलाना।
तो यानी कि गानों को आपने अपनी जिंदगी में हर पल, हर लम्हा, हर कदम महसूस किया।
भाई एक बहुत ही मज़े की मिसाल मुझे याद आई। हम लोग जब मेडिकल स्कूल में थे और इम्तिहान और वाइवाज वगैरह चल रहे होते थे, तो अक्सर वाइवा के बाद दोस्त सवाल पूछते थे, भाई कैसा इम्तिहान हुआ, कैसा वाइवा हुआ। हमने उसकी ये एक नई ट्रेडिशन निकाली थी कि वाइवा से वापस आने के बाद हम एक गाना लगाते थे जिससे पता चल जाता था कि भाई आज का इम्तिहान किस तरह का हुआ।
तो मतलब अगर अच्छा बुरा ज्यादा बातचीत नहीं, बहुत
तो
थके
गाने
हैं।
से ही हम बता देते थे, अगर आपको कुछ कमरों से गाने की आवाज आ रही है, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करें,
इसका मतलब वाइवा अच्छा नहीं हुआ, डोंट आस्क, राइट?
एग्जैक्टली, अकलमंद के लिए इशारा काफी होता है।
तो अब हम किस गाने की तरफ बढ़ रहे हैं ना, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर आवर लिसनर्स?
भाई पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में हम जॉर्डन गए और वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सहरा है और उसको वादी रूम कहते हैं।
ओके।
जब आप वहाँ सहरा की दरमियान, उसकी खुश्क सहरा के दरमियान में आप मौजूद हों, आप आँखें बंद करें, चारों तरफ गहरी खामोशी, भरपूर सन्नाटा आपको घेरे हुए हो, अपने ही दिल की धड़कन सुनाई देती हो, तो ये गाना खामखा जहन में आ जाता है। तो जैसे हम ये जिक्र कर रहे थे कि वादी रूम की गहरी खामोशी और सहरा के सन्नाटे में जो गाना याद आता है, उसके जो लाइनें दिल में गूंजती हैं वो यही हैं कि ये ज़मीन चुप है, आसमां चुप है, फिर ये धड़कन सी चार सू क्या है। अब इसी गाने को अगर मैं अपनी आज की ज़िंदगी में देखूं, तो कैंपेन की राहों में कितने कांटे हैं, आरज़ुओं ने हर किसी दिल को दर्द बांटे हैं, कितने घायल हैं, कितने बिस्मिल हैं, इस खुदाई में एक तू क्या है।
ये खुद भी बहुत अच्छा लिखती हैं, मुशायरों में जाती हैं और इनकी एक खुद की किताब भी छप चुकी है इनकी पोइट्री की।
जी, इसका नाम है इस्तियारा शाम का। ये 2006 यानी मार्च 2006 में पब्लिश हुई थी।
तो अभी जो गाना आपके लिए हना लेकर आई थी वो रज़िया सुल्तान से था और इस गाने की में आवाज़ थी लता जी की। जहाँ निसार अख्तर के बोल थे, खयाम का सोलफुल संगीत, पर्दे पर हेमा मालिनी एज रज़िया सुल्तान एंड इस मूवी में उनके साथ धर्मेंद्र थे। सो दोनों ही सॉन्ग कमाल अमरोही के थे। अब हम लोग किस दिशा में बढ़ रहे हैं ना, आप किधर ले जा रही हैं हमको? अभी तक तो जो बातें हुई पाकीज़ा में, मीना कुमारी की बात हुई, इज़ देयर एनी हीरोइन एक्ट्रेस जो आपको बहुत पसंद हो? हम कल कुछ बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया था।
जी पूजा, बिल्कुल, आप सभी जानते हैं, हमारे लिसनर्स जानते हैं कि इस साल के शुरू में श्रीदेवी जी की नागहानी मौत से सबको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा।
बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ।
जी, तो बहुत सी बचपन की यादें, कॉलेज की बेहतरीन ज़माने की यादें उनकी मूवीज़, उनके गानों से हम सब की जुड़ी हुई हैं।
जी बिल्कुल सही कहा, हम सब उनके गाने, डांस, वो सब देख देख के ही, यू नो, उस समय के जितने फंक्शंस होते थे, देयर वाज नॉट अ सिंगल वन जब उनके गाने ना बज रहे
बिल्कुल हो। और जब कोई इतना पॉपुलर और मनपसंद आर्टिस्ट जब बिछड़ जाता है, तो इट फील्स लाइक अ पार्ट ऑफ यू हैज़ गॉन विद देम।
बिल्कुल सही कहा आपने।
तो उसी उन्हीं दिनों में उनके लिए मैंने एक नज्म लिखी थी एज अ ट्रिब्यूट, और मैं अपने लिसनर्स को सुनाना चाहूंगी।
प्लीज प्लीज।
इस नज्म का उन्वान है अलविदा अप्सरा। चांदनी की उठाए चिता ले चले, पल्लवी दब गई लकड़ियों के तले, वो के पूजा बनी जबकि देवी ही थी, उसकी जैसी कहीं अब नहीं कोई भी। राज दिल पे करोड़ों के करती रही, मुंह अचानक से मोड़ा, कहाँ चल पड़ी। जितने किरदार तूने निभाए सिरी, सच है तुझसी न होगी कोई दूसरी। लौ सितारों की तो ख़त्म होती नहीं, चांदनी जल के भी भस्म होती नहीं। साथ तेरे गया याद का टोकरा, बचपना वो मेरा अलविदा अप्सरा।
बहुत बहुत सुंदर, आपने श्रीदेवी के हर किरदार को जैसे अपने लफ्ज़ों में उतार दिया। और आई थिंक आपने मुझसे ज़िक्र किया था कि आपने किसी पेंटर की एक पेंटिंग देखी जिसमें उन्होंने सारे उनके जो फिल्मी किरदार निभाए थे श्रीदेवी जी के।
इट्स अ कलाज ऑफ पेंटिंग्स जो उनके जितने अहम किरदार थे उनकी सारी पॉपुलर मूवीज से उस आर्टिस्ट ने उनको यकजा किया है। तो जाहिर है हर कोई अपने हिसाब से अपने अंदाज से ट्रिब्यूट देना चाहता है। तो अपने लिसनर्स के लिए मैं इस वक्त एक ऐसा गाना पेश करूंगी जिससे श्रीदेवी की याद बहुत ख़ास अंदाज में ताज़ा होती है। सुनिए। इवन दो कि ये गाना श्रीदेवी जी के ऊपर पिक्चराइज नहीं था, लेकिन हम सब उनके जो फैंस हैं वी इक्वेट चांदनी विद श्रीदेवी।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, चांदनी उनका जैसे आपने कहा एक पर्यायवाची है, आप किसी को चांदनी बोलें इट मींस
वो उनका परिचय बन चुका है
श्रीदेवी। सो ये जो सॉन्ग था ये जैसा कि इन्होंने कहा मूवी का नाम चांदनी, और इसको एक मिनट हाँ इसको गाया था लता मंगे सुरेश वाडकर जी ने, और यश चोपड़ा की ये म्यूजिकल मूवी थी, शिव हरी का संगीत था और आनंद बख्शी के बोल थे। तो हम लोग सुन रहे हैं रेडियो फ्री नेशनल, एक कम्युनिटी बेस्ड रेडियो विच रन्स ऑन सपोर्ट ऑफ लिसनर्स लाइक यू। यू कैन डोनेट टू आर रेडियो स्टेशन, हेल्प अस डायरेक्टली थ्रू वेबसाइट, और एज जैसे कि हम सब, मैं हर हफ्ते इस बात को रिपीट करती हूँ, हम सब बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। amazon.com हमें एक बहुत अच्छा ज़रिया देता है कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए। प्लीज़ गो टू smile.amazon.com, फॉलो द prompts टू सेलेक्ट योर चैरिटी एज रेडियो फ्री नेशनल, एंड एवरी टाइम यू मेक अ परचेज आर स्टेशन गेट हेल्प थ्रू Amazon. इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फ्रॉम आर लिसनर्स एंड फॉर द कम्युनिटी। सो बहुत सारे लोग जिन्होंने ऑलरेडी ये मॉडरेशन किया हुआ है अपने Amazon सेटिंग में, थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि जिनके पास भी Amazon है वो इस बात पे थोड़ा विचार करेंगे। आज हम सुन रहे हैं देसी जायका, थोड़े गाने थोड़ी बातें पूजा के साथ, और हमारे साथ स्टूडियो में स्पेशल गेस्ट हना अली, कैंडिडेट फॉर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, आज यहाँ एक शायरा के रूप में। तो हना ये बताएं कि अब व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लिस्ट, आप हमें कहाँ ले चल रही हैं?
भाई ये सफ़र मौसीकी का मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है प्रोग्राम करते हुए, आई होप कि हमारे लिसनर्स भी इंजॉय कर रहे होंगे।
बिल्कुल बिल्कुल।
हज़ारों दाग हैं उस पर ये माना, हज़ारों दाग हैं उस पर ये माना, मगर वो चांद मेरा दिल नहीं है। देखते हैं कि पूजा को हिंट मिला या नहीं।
आई टुक योर हिंट एंड हियर इज इट।
चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम।
तो है ना, डिड आई पिक द राइट सॉन्ग?
जी हाँ बिल्कुल। और रफ़ी साहब जैसा गायक सदियों में एक बार हम जैसे सुनने वालों को नसीब होता।
बिल्कुल सही कहा, इस आवाज़ में अभी आपने नमूना किया, रफ़ी साहब की आवाज़ थी आरडी का सिग्नेचर म्यूज़िक मजरू के बोल, और रफ़ी साहब की आवाज़ तो हमेशा से मैं कायल हूँ उसकी।
उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, उसकी मेलोडियस क्वालिटी इस तरह की है कि सुनने वाले को पता नहीं चलने देती कि कहाँ वो रुके, कहाँ उन्होंने सांस ली।
बिल्कुल सही कहा।
हीर रांझा का एक पूरा गाना है जो रफ़ी साहब ने सरगोशी में गाया है।
कौन सा गाना, कुछ याद है मुझे तो?
जी उसके बोल हैं, मेरे जीवन में तुम आई खुशियों की बारात लिए, और प्रॉबेबली उसकी पिक्चराइजेशन का सेटअप भी इसी तरह का है कि पूरा गाना सरगोशी में है, मिनिमल म्यूजिक और ऑर्केस्ट्रा के साथ
जी।
और पूरा गाना उन्होंने अपनी आवाज पे कैरी किया है।
पता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो जिन गानों में संगीत बहुत ज्यादा लाउड होता है, आप गाने का इम्पैक्ट जैसे खत्म सब हो
ड्राउन हो जाती है।
जी बिल्कुल,
और वो शायद आवाज ड्राउन आउट इसलिए भी करना चाहते हैं कि उस आवाज की कैपेबिलिटीज बहुत वीक होती हैं।
बट रफ़ी साहब ने, जैसे आपने बताया कि उस गाने को ऐसा गाया, कोई रफ़ी साहब का फेवरेट सॉन्ग आपके दिमाग में क्या लाई हैं आप हमारे लिए?
हम लेके आए हैं पुकारता चला हूँ मैं,
चलिए
गली
सुनते
गली
हैं।
बहार की भाई खुदा की कसम मज़ा आ गया, जी खुश हो गया, क्या बेहतरीन गायकी।
मैं देख रही थी जिस हिसाब से यू वर ग्रूविंग विद द ट्यून्स, मुझे लग रहा था यू वर थॉरली इंजॉयिंग दिस सॉन्ग।
ये दिल लगी ये शोखियां सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। अरे बड़ा प्यारा शेर मुझे याद आया, बड़े अच्छे शायर हैं इरफान सत्तार, कहते हैं बसत खुलूस उठाता रहा सभी के ये नाज, बसत खुलूस उठाता रहा सभी के ये नाज, हमारे दिल ने हमारी ही दिलबरी नहीं की।
जरा सा अगर थोड़ा इसको, आई नो इट्स नॉट कि उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे या इंग्लिश में,
तो खुलूस का मतलब होता है सिंसियरिटी।
जी,
यानी कि हम सिंसियरिटी से अपने दूसरे इर्द गिर्द के लोगों के तो नाज उठाते रहे, लेकिन अपनी बारी जब आई तो अपनी दिलबरी ना की।
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सो ये गाना था जो अभी हना ने आपके साथ इंजॉय किया, इट्स फ्रॉम मेरे सनम, ओपी नैयर का म्यूजिक, मजरू साहब के बोल, आवाज रफ़ी साहब की, जिसमें हना ने कहा कि उन्होंने कहाँ सांस ली है कहाँ छोड़ी, इट्स सीमलेस, पता ही नहीं चलता। पर्दे पर आगे आगे साइकिल पर आशा पारेक थी और पीछे उनके जीप में स्वीटली ये गाना गाते हुए
स्टॉकिंग करते हुए मल्टीटास्किंग।
उस जमाने में शायद उसे स्टॉकिंग नहीं कहते होंगे, बट या
जी, आज के जमाने में इसको एक
एग्जैक्टली
जी बिल्कुल
वही वर्ड है। तो चलिए एज हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं ना, व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट अबाउट लॉरेंस गार्डन?
भाई लॉरेंस गार्डन जो है उसकी बड़ी प्यारी यादें हमारे पास हैं। हमारा जो हॉस्टल था मेडिकल स्कूल का, उसके पास लॉरेंस गार्डन होता था, लाहौर शहर की हम बात कर रहे हैं। तो हम दोस्त अमूमन वॉक करके जाया करते थे, जिस दिन बहुत मौज मस्ती में होते थे, हॉर्स कार्ट जो हम ले लेते थे। तो सर्दियों के दिन थे और इसी तरह हमने एक टांगे वाले से कहा कि भाई हम लॉरेंस गार्डन तक जाना चाहते हैं, बहुत ही कम फासला था और मैं बिल्कुल घोड़े के साथ खड़ी हुई थी। और जैसे आप जानते हैं सर्दियों में जो है भाप बन जाती है, तो उसकी जो सांस लेने की जो भाप थी वो बिल्कुल मेरे कंधे के ऊपर बिल्कुल करीब इतनी थी। तो मेरे जो दोस्त थे वो सब, हम हंसी मजाक आपस में करते रहे और हमने उसी वक्त वो गाना सोचा, मुझे छू रही हैं तेरी गर्म सांसें।
I know you didn't ask me to bring that song, but हमारे जो आपके इस इंसिडेंट से जुड़ा हुआ, अपने लिसनर्स को उसकी दो लाइनें सुनाने की इजाजत चाहती हूँ।
जी जी, इजाजत।
मुझे छू रही हैं तेरी गर्म सांसें।
भाई सबसे पहले तो गुलजार साहब से माजरत, और वजह उसकी ये है कि हमने उनका इतना खूबसूरत रोमांटिक गाना एक ऐसे अनरोमांटिक एपिसोड से जोड़ दिया।
देखिए गानों की खासियत ये होती है, वो ये बता के नहीं आते कि किस मोमेंट पे आपको किस इंसिडेंट के साथ जुड़ के आपके दिमाग में आएंगे, बट गाने जो हमारी जिंदगी के साथ ऐसे गुथे हुए होते हैं कि बस वो ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ और वो लाइन झट से दिमाग में बजने लगती है। तो ये जो गाना अभी हम लोगों ने सुना, जो हना को घोड़े ने याद दिलाया था, दैट वाज फ्रॉम मूवी स्वयंवर। इसकी लिरिक्स जैसे कि हना ने बताया, ये गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना था, राजेश रोशन का संगीत था और गाया था अगेन हना के फेवरेट मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर ने। तो हना ये बताएं कि जब हम गानों की बात करते हैं, तो आपको जब आप गाना कुछ आपको पसंद आता या जिसको आप अपने को गुनगुनाता पाती हैं, आपके हिसाब से गानों में क्या वो बात होती होती
बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने पूछा। दो बातें हैं, पहली बात तो ये कि मैं गाना सिर्फ गुनगुना सकती हूँ, गा नहीं सकती क्योंकि मैं एक बेसुरी देवी हूँ।
यार ऐसे मत बोलो, हम सभी गुनगुनाते हैं, गाने वाले तो बैठे हैं ना इंडस्ट्री में, अब गुनगुना के हम सुख लेते हैं।
लेकिन हकीकत ये है कि हमारे दोस्त जो सुन रहे हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि हम जब भी अपने आप को कुछ गुनगुनाते हुए पाते हैं तो वो अमूमन कोई पुराना गाना होता है।
बिल्कुल।
अब किसी भी गाने को टाइमलेस क्लासिक बनाने में تین ایلیمنٹس کا ہونا بہت سخت ضروری ہے. پہلے خوبصورت لیرکس,
بالکل بہت ضروری ہے,
جی ہاں. دوسرا میوزک اسٹرکچر, اس کی کمپوزیشن. تیسرا میلوڈیس آواز, ایسی آواز جو اس لیرکس کو, اس کمپوزیشن کو کیری کرے, اس کا ایک باقاعدہ حق ادا کرے.
جی بہت بہت گہری بات آپ نے کہی ہے. مجھ سے بھی یہ سوال کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ کیوں پرانے گانے. اینڈ ایسا نہیں ہے کہ آپ یا میں یا ہماری جنریشن نئے گانوں کو پسند نہیں کرتی, بٹ دیر آر ویری فیو نیو جس کے ساتھ ہم کنیکٹ کر پاتے ہیں.
اسی طرح گلزار کے لیرکس کے اوپر جب بات آئی ہے تو جاوید اختر صاحب, گلزار صاحب, یہ بہت ان چند ایک ایسے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی انٹیگریٹی کو کمپرومائز نہیں کیا کسی آئٹم سانگ کے لیے.
بہت صحیح, بہت عمدہ بات کہی آپ نے.
جی تو اگلا گانا جو میں اپنے لسنرز کے لیے پیش کرنا چاہتی ہوں وہ بھی گلزار صاحب کے لیرکس ہیں. گانا قدرے نیا ہے اور آج کل کی بہت اچھی گائکا ہیں ریکھا بھردواج, ان کی آواز میں.
واہ واہ, ریکھا بھردواج کی آواز کے کئی سانگ جو ابھی نئے آئے ہیں واقعی دل کو چھونے والے ہیں. دیکھتے ہیں حنا کیا لے کر آئی ہیں. یہ تھی ریکھا بھردواج کی آواز. اینڈ آئی اگری ود ہر ود ہنا وین شی سیڈ کی ان کی آواز میں کیا سولفل ہے. ایسے ہی مجھے اریجیت سنگھ کے بھی کئی آج کل کے نئے گانوں میں بھی ان کی آواز بھی بہت اچھی لگتی ہے. تو ہنا ٹائم بھاگ رہا ہے,
ہماری پوری زندگی یہی وقت کم اور مقابلہ سخت ہے اور ہماری باتیں تو کبھی ختم ہونے والی نہیں.
بالکل,
جاتے جاتے ایک بڑا بہترین موقع ہے میرے پاس اپنے تمام دوستوں کو جو سات سمندر پار ہیں اور اس پوری گول دنیا کے چار کونوں میں.
کیا بات کہی ہے, گول دنیا کے چار کونے.
میں اپنے تمام دوستوں کو یہ گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی.
چلیے یہ گانا ہنا کی طرف سے سبھی سننے والوں کو اور ان کے دوستوں کے لیے.
دل چاہتا ہے,
اب تک پوجا کے شو سنتے سنتے سب سمجھ گئے ہوں گے کہ باتیں پوجا کبھی ٹائم پہ ختم نہیں کر پاتی. تو ہنا بہت بہت شکریہ آج آپ کا یہاں ہونے کے لیے, ہمارے ساتھ گانے, قصے, باتیں شیئر کرنے کے لیے.
بہت شکریہ, میں نے اس بریک کو بہت انجوائے کیا, بے تحاشا انجوائے کیا. تھینک یو فار انوائٹنگ می اینڈ ہیونگ می. آخر میں میں اپنے تمام دوستوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت ہی جلد کچھ دنوں میں ہندوستان اور پاکستان دونوں کا یوم آزادی ہے. میری طرف سے, اسٹوڈیو کی طرف سے تمام دوستوں کو یوم آزادی اور انڈیپینڈنس ڈے کی مبارکباد. چلتے چلتے گلزار کی دو لائنیں پیش کرنا چاہتی ہوں.
جی ارشاد.
آنکھوں کو ویزا نہیں لگتا,
آنکھوں کو ویزا نہیں لگتا, کیا بات کہی ہے.
سپنوں کی سرحد ہوتی نہیں, بند آنکھوں سے روز میں سرحد پار چلا جاتا ہوں ملنے مہدی حسن سے. آنکھوں کو ویزا نہیں لگتا,
کیا بات,
سپنوں کی سرحد ہوتی نہیں.
ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ٹو آل آر لسنرز.
تن وطن میرے آباد رہے تو.
ریڈیو